لگی لگن بس ایک یہی 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 ہمیں تپسیا کرنا ہے بن کے تپسی مورت ساتھی اب اپنے گھر چلنا ہے لگی لگن بس ایک یہی لگی لگن بس ایک یہی ہمیں تپسیا کرنا ہے بن کے تپسی مورت ساتھی اب اپنے گھر چلنا ہے لگی لگن بس ایک یہی لگی لگن بس ایک یہی
ओम शांति। संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या भट्टी मैं आप सभी मीरपेट सिकंदराबाद से पधारे हुए भाई बहनों का आदरणीय दादियों की तरफ से, दीदियों की तरफ से, वरिष्ठ भाइयों की तरफ से बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। और ये आपका पदम पदम सौभाग्य है कि मधुबन बाप दादा की डायरेक्ट कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है, उसमें आपको भट्टी करने का ये चांस मिला है। मैं कहूंगी डायमंड चांस मिला है, तो इस चांस का हम पूरा पूरा लाभ लेंगे। जैसे कि नाम है मौन तपस्या भट्टी, तो कोशिश करेंगे कि हम पूरा ही मौन में रहें। बहुत जरूरी आवश्यक हो तभी आपस में कुछ बातचीत करें। वैसे तो नाम है संस्कार परिवर्तन। हाँ, भट्टी में हम आते हैं अपनी सूक्ष्म चेकिंग करके अपना हम परिवर्तन करें, पावरफुल योग का भी हम अनुभव करें, अपनी संपन्न स्थिति का अनुभव करें। तो विस्तार से क्या लक्ष्य और उद्देश्य है वो स्पष्ट करेंगे आदरणीय गीता बहन जी। उसके पूर्व मैं जानना चाहूंगी आप में से कितने लोगों को ट्रांसलेशन चाहिए, जिनको हिंदी नहीं आती है और तेलुगु ट्रांसलेशन चाहिए वो हाथ उठाएंगे। कोई बहन तेलुगु में पूछेंगे तो फ्रीक्वेंसी 106 है। एक बार तेलुगु में भी आप अनाउंस कर दो कि सबको तेलुगु में ट्रांसलेशन मिल रहा है जिनको हिंदी नहीं आती।
फ्रीक्वेंसी 106 लो तेलुगु ट्रांसलेशन वेनकाल नडुस्तुंदी। सो मी एफएम ट्यून चेसुकोंडी 106 के। इंका एवरैते मातलु पर्टिक्युलर गा मॉर्निंग कूडा अनाउंस चेसामो తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ కావాల్సిన వాళ్ళు వెనక్కి కూర్చోండి, ఇప్పుడు ఎలా కూర్చున్నారో ఒకటే సరే, కానీ ఫర్దర్ వెనక్కి కూర్చోవాలా।
గీతా బెన్ జీ కా భీ హమ్ ఆజ్ కీ భట్టీ మే ఏక్ హాత్ కీ తాలీ సే, హ భట్టీ మే ఆప్ సభీ ఏక్ హాత్ కీ తాలీ కా యూజ్ కరేంగే, బహుత్ బహుత్ స్వాగత్ కర్తే హై। ఆప్ వరిష్ఠ రాజయోగ శిక్షికా హై, బిజినెస్ ఇండస్ట్రీ వింగ్ కే ఆప్ హెడ్ క్వార్టర్ కోఆర్డినేటర్ హై। 1969 में आप गुजरात सूरत से ज्ञान में आए और उसके बाद 72 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। प्रारंभ में गुजरात के कुछ शहरों में सेवाएं देते हुए भावनगर सब जोन की आप 14 वर्षों तक संचालिका रहीं और 1993 से आपने ज्ञान सरोवर में आवास निवास विभाग और रिसेप्शन के प्रभारी के रूप में सेवाएं दी हैं। 2011 से आप शांतिवन में अपनी सेवाएं देते हैं। आप बहुत विषयों पर वक्तव्य देते हैं, आप अनुभवी वक्ता हैं। विदेशों में भी और भारत में भी भ्रमण करके अनेक स्थानों पर सभी आत्माओं को अपने अनुभवों से आप लाभान्वित करते हैं। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका जीवन भी है। नाम गीता है और गीता की शिक्षाओं के अनुरूप, हाँ, सच्ची गीता जो बाबा हमें सुनाते हैं उसके अनुरूप ही आपका जीवन है। और आपके लिए मैं कहूंगी, जीवन बंध को जीवन मुक्ति देने वाली आप शिव बाबा की प्यारी हैं। ज्ञान राजयोग त्याग तपस्या की मूर्ति आप न्यारे हैं। तो अभी हम भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य गीता बहन जी से सुनेंगे, उसके बाद शशि बहन जी आएंगे हमारे बीच में और फिर सभी को टोली भी दी जाएगी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी तपस्वियों का बाबा की इस तपोभूमि में हार्दिक स्वागत है। आपके लिए ताली बजा। माउंट आबू में लोग घूमने के लिए आते, पर बाबा के बच्चे तपस्या के लिए आते। कितना अंतर है हा? कुछ ही दिनों पूर्व बाबा ने मुरली में कहा था कि तुम बच्चे यहाँ कोई तीर्थ करने नहीं आते हैं, कोई पहाड़ी के हवा खाने नहीं आते, याद है ना? कुछ ही दिनों पहले बाबा ने कहा क्योंकि हम जो कुछ करते हैं समझ पूर्वक करते हैं, लक्ष्य से करते हैं। हमारे हर कर्म में, हर आयोजन में स्व उन्नति और विश्व कल्याण का लक्ष्य रहता है ना? ऐसे हाँ? देखो बाबा के बने हैं तो कितना जीवन बदल गया। हम जो कुछ करते हैं स्व उन्नति और विश्व कल्याण के लिए करते हैं। मधुबन की पावन भूमि, तपोभूमि, वरदानी भूमि, परिवर्तन भूमि, महिमा तो पता है ना सबको। और ये सत्य है कि इस भूमि पर आदि देव ब्रह्मा बाबा ने, जगदम्बा मां सरस्वती ने साधना की। हमारी दादियां आदि रत्नों ने भी साधना की है। और इस यज्ञ की, क्योंकि असली यज्ञ भूमि तो यही है, बाकी तो एक्सटेंशन है ना? असली यज्ञ भूमि तो यही है। और बाबा ने इस यज्ञ भूमि को रचा ही इस दो लक्ष्य से कि हरेक आत्मा बाबा के बच्चे यहां आकर के आध्यात्मिक दृष्टि से रिफ्रेश हो, मुरलियों के महावाक्यों को याद करिए, बाबा ने इस भूमि के लिए क्या क्या कहा है, कि बच्चे यहां आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, और हमारी रिफ्रेशमेंट है ज्ञान और योग से, ज्ञान के नए नए गहरे राज समझते हैं, पॉइंट्स समझते हैं, तो आनंद होता है ना? कोई बात समझ में आती है तो कितना आनंद होता है। क्योंकि इस भूमि पर हमारी दादियां अभी भी निमित्त बनी हुई है, आदि सेवा रत्न भी निमित्त बने हुए हैं, तो उन सबके जीवन से भी हमें मधुबन में प्रेरणा मिलती है। एकांत भी है, प्राकृतिक सौंदर्य भी है, और जो भी आते हैं वो तपस्या के लक्ष्य से ही आते हैं। मधुबन की चार धाम की यात्रा तो फेमस है, हा? तो बाबा से मिलन मनाने, दिल की बातें करने मधुबन में आते हैं। ऐसी भूमि में आप सबको भी सेवा तपस्या का मौका मिला है, और उसमें भी मम्मा के दिन को लेकर स्पेशल डेट चूज की है मीरपेट वालों ने, हा? मम्मा का दिन इस भूमि पर बाबा संपूर्ण बने, मम्मा भी संपूर्ण बनी, तो संपूर्णता के वाइब्रेशंस इस भूमि में हैं। हम अनुभव करते हैं कि मधुबन में हमें सहज योगी जीवन का अनुभव होता है, नेचुरली योगी, मेहनत नहीं लगती, क्योंकि मधुबन किसका है, किसका है, बाबा का, कोई व्यक्ति का नाम नहीं, साकार में भी बाबा थे, लोग आते थे पूछते थे कि ये सब किसका है, तो बाबा कहते थे बच्चों का है, और बच्चों से पूछते थे ये सब किसका है, तो बच्चे कहते थे बाबा का है। तो किसी का मालिकपन नहीं, सबका है बाबा का है। तो जहां बेहद का भाव है पर्टिकुलर किसी का नाम अधिकार नहीं है। तो ऐसी बेहद की भावना के वातावरण में अपने आप को भी शरीर की हद से ऊपर बेहद में ले जाना सहज है। मधुबन निवासी अनुभव करते हैं क्योंकि मम्मा का दिन हो, 18 जनवरी बाबा का दिन हो, मधुबन में तो मेहमान है ही है, बाबा के बच्चे चारों ओर से आए हुए होते ही हैं। मधुबन वालों को तो 365 दिन अपनी सेवा में रहना ही होता है। पर हम अनुभव करते हैं कि नेचुरल योग बाबा से रहता है। स्वतः योगी रह सकते हैं। तो ये भी एक अनुभव करने का आपको मौका है कि सहज योगी, स्वतः योगी आप देखिए अपने आप को कि नेचुरल किसकी याद आती है। वातावरण है ना, पवित्र योगियों के निरंतर तपस्या के वाइब्रेशंस का है। सेंटरों में तो हम एक दो घंटा सेंटर में रहते हैं, बाकी तो घर में रहते हैं, लौकिक में, दुनिया में, नौकरी में। यहां ये मौका है 3-4 जो भी दिन आप यहां हैं, तो इस वायुमंडल में रहने का। तो वायुमंडल भी कितना हमें मदद करता है। बाबा का घर और योगियों के वाइब्रेशंस का वायुमंडल, पवित्र ब्रह्मा भोजन और सभी बातों से फारीग होकर के, फ्री होकर के आप आए हैं। कोई चिंता तो नहीं है ना? हाँ, जो भी कारोबार है पीछे सौंप कर आए हैं ना, और बाबा तो है ही है, हाँ? जिसको देके आए हैं, है ना? खास छुट्टियां लेकर के आप आए हैं। तो मन को और कोई चिंतन है नहीं, है ना? है तो भी 4 दिन एक तरफ रख देना, बाद में सोचेंगे उस पर। हमें संभालना है, हमें ही हर बात सुलझानी है। पर अभी हमने भट्टी का प्रोग्राम बनाया है तो वो बातें एक तरफ रख दे और अभी हम जिस प्रोग्राम से आए हैं उसमें अपने आप को रखेंगे। शुरू से बठिया चलती रही है। दादियां बताती हैं कि जब सिंध हैदराबाद में थे, कराची में थे, तो वतन से भट्टी के प्रोग्राम आते थे और प्रोग्राम बाबा लिख देते थे बोर्ड पर। कहते हम घंटों एक ही संकल्प में स्थित होकर बैठ जाते थे। कि मैं वो ही शुद्ध आत्मा हूं, हम घंटों उस नशे में बैठे रहते थे। जब दादी ने ये बताया तो हम अपने आप में सोचने लगे कि घंटों इसी नशे में कैसे बैठते। पर अब जैसे जैसे हम शुद्ध आत्मा बनते जाते हैं, अब महसूस होता है कि उस एक संकल्प में भी हम कितना आनंद पा सकते हैं। तो बाबा मुरली में बताते हैं कि भट्टी माना ईंटें पकती है। भट्टी शब्द कैसे आए, कच्ची ईंटें, पता है ना, भट्टे में डालते हैं और उसमें वो पकती है। और जब पकती है तो रूप रंग उसके बदल जाते हैं, है ना, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो भट्टी यज्ञ में इसलिए रखते कि हम परिपक्व बने और पक्के बने। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था, अभ्यास करते करते परिपक्व बनेंगे फिर कर्मातीत बनेंगे। परिपक्व मैच्योर स्पिरिचुअली आध्यात्मिक दृष्टि से हम मैच्योर बने। हमारे में स्थिरता, गंभीरता, स्थिरता माना एक रस, और सिंसियर निष्ठा, और हम हरेक चाहते हैं, हम हरेक चाहते हैं कि जिस ज्ञान और योग मार्ग के हम राही बने हैं तो हमारे में परिपक्वता हो। इंसान कोई भी चीज सीखता है तो उसमें परिपक्व बनना चाहता है। मास्टरी पाना चाहता है, ना, देखो जिस भी फील्ड को जो चुनते हैं, कोई फिल्म का क्षेत्र, कोई गेम्स का, खेल का क्षेत्र, कोई बिजनेस, जिस भी फील्ड को व्यक्ति चुनते हैं, प्रारंभ में उनके लिए वो नया होता है, मुश्किल लगता, भूलें होती, मेहनत लगती, पर हरेक लक्ष्य रखते हैं कि अभ्यास करते करते हम उसमें परिपक्व बने, मास्टर बने, परफेक्शन आवे। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। गीता में भी अर्जुन पूछते हैं कितना योग के बारे में आपने समझाया, पर अभी भी मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, अभी भी मैं मूंझ रहा हूं, मन भटक रहा है। तो उसको भी उत्तर क्या दिया गया कि अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन मेरे में लगता जाएगा। अभ्यास, हर चीज में प्रैक्टिस चाहिए। अभ्यास नहीं तो सीखा हुआ भी भूल जाता है। रोज अभ्यास। अब नेचुरली प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक दो घंटा रोज समय निकाल पाते, तो बाबा भट्टी के नाम हम स्पेशल टाइम निकालते हैं, सभी बातों से फारिग होकर साइलेंस में स्वदर्शन करते हैं। स्वदर्शन माना स्वॉट एनालिसिस आता है ना, स्वॉट एनालिसिस, खुद को देखना। ऐसा हर कंपनी में भी कराते हैं, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। एस माना स्पेशलिटीज, आपकी क्या विशेषताएं हैं, बाबा ने बताई है कि आदि अनादि हम शुद्ध आत्माएं, इस प्रकार कितनी बातें बताई। और इस जीवन की भी आपकी क्या स्पेशलिटी है, वर्तमान इस जन्म की भी, वो देखो। W means weaknesses, विशेषताओं के सामने कमजोरियां क्या है, कहां आप कमजोर हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, मीन्स हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। मेरा वीक पॉइंट कौन सा है, लीकेज कौन सी है, जहां से मेरी शक्ति बह जाती है, किया करा ज्ञान योग का पावर निकल जाता है, वो लीकेज कौन सी? तीसरा, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटीज। स्पेशलिटी के हिसाब से आपको आगे बढ़ने की, परफेक्ट बनने की, सफल होने की अपॉर्चुनिटीज कौन सी मिल सकती है, हो सकती है। और टी मीन्स थ्रेट। कमजोरियां हैं तो थ्रेट भी क्या है हमारे लिए, कि कौन से विघ्न आ सकते हैं, कहां फेल हो सकते हैं। स्वदर्शन, ये बहुत जरूरी है कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, योग मार्ग पर चल रहे हैं, तो बीच बीच में ये चेक करना कि राइट ट्रैक पर चल रहे हैं, मंजिल की ओर हर कदम उठ रहा है ना। चलना ही पर्याप्त नहीं है, चलते रहने से मंजिल नहीं मिलती है, पर मंजिल की ओर हर कदम चलते हैं तो पहुंचते हैं। तो देखो, कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो जाते, ट्रैक से उतर तो नहीं जाते। ठीक ट्रैक पर चल रहे हैं ना, मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं ना, ये चेक करना जरूरी है। और दूसरा, किस रफ्तार से चल रहे, स्पीड क्या है। मंजिल कितनी ऊंची है, टाइम की मार्जिन क्या है, और उस हिसाब से स्पीड क्या होनी चाहिए, है ना, वो हिसाब देखते रहना है। समझ गए ना बात कि मंजिल कितनी ऊंची है, कहां तक पहुंचे, टाइम कितना है, मार्जिन कितनी है टाइम की, और उस हिसाब से स्पीड है। तो ये आवश्यक है कि हम साइलेंस में बैठकर बाबा को सामने रखकर हम ये बातें चेक करें। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ पुरुषार्थी बनना नहीं, पुरुषार्थ करते करते परफेक्ट बनना है ना। आखिर कब तक पुरुषार्थी रहेंगे, हमें संपूर्ण भी बनना है। है ना सबका लक्ष्य, संपूर्ण भी बनना है ना। हाँ, और बाबा दूसरा ये कहते हैं कि कपड़े मैले होते हैं तो भट्टी में चढ़ाते हैं, बहुत पानी उबालेंगे सोडा डाल के, है ना, उसमें कपड़े उबालते हैं, बहुत मैले हैं तो फिर भट्टी में डालना होता है तो दाग निकलते हैं। हम आत्माओं में भी जन्म जन्मांतर से जो दाग बने हैं, हर एक अपने आप को जानते हैं, हर एक अपने आप को जानते हैं कि हमारी स्लेट साफ है या दाग है। कुछ न कुछ तो है, कोई ना कोई विकार तो क्रॉनिक बना हुआ है, भाई किसी में गुस्सा नहीं है पर कोई और विकार है। कोई प्रेम स्वरूप है पर फंस भी जाते हैं, कोई पवित्रता में बहुत पक्के हैं पर गुस्सा भी है। तो हर एक अपने आप को जानते हैं, कौन सी दाग है, कौन से विकार क्रॉनिक है। बहुत डीप रूटेड बीमारी है विकार की। तो मुझे तपस्या का लक्ष्य ही दो हैं, है ना, भक्ति में भी लोग तपस्या क्यों करते हैं। तपस्या का एक लक्ष्य प्रभु मिलन है, भगवान को प्राप्त करना है, मिलना है, है ना, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप करते हैं। हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप नहीं करते, हमें परमात्मा मिल चुका है, हमें बाबा मिल चुका है, हम परमात्मा से ज्ञान गुण शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा जैसा बनने के लिए तप करते हैं। ये अंतर है। परमात्मा प्राप्ति हो चुकी है पर हमें, हम उनके बच्चे हैं, हमें उनके जैसा बनना है। बाप समान बनना है, यही है ना लक्षण सबका। तपस्या का लक्ष्य एक ये है, प्रभु मिलन। हमें बाबा मिल चुके हैं, हम उनके मिलन का सुख आनंद लेते हुए, हम उनका रंग अपने आप में लगाना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। और दूसरा तपस्या का लक्ष्य है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि के लिए तपस्या करते हैं। कि आत्मा देहभान में आने से इंद्रिय रसों में आकर्षित हो गई है ना। बाबा ने पूरा ड्रामा की स्टोरी हमें बताई है ना। कि जैसे हम शरीर धारण कर पार्ट बजाते बजाते दो युग के अंत में आत्मा विस्मृत होते हैं और खुद को देह समझने लगते हैं, और खुद को देह समझने के कारण हम इंद्रिय रसों में चले गए। देखने का रस, देखने का रस, जाती है ना बुद्धि उसमें भी। कौन कहाँ जा रहा है, आंखें भी गुम जाती, चेहरा भी गुम जाता है, कोई मतलब नहीं है तो भी है ना। देखने का रस, आदत पड़ गई, बिना मतलब की बातों में हम अपनी एकाग्रता खोते हैं। सुनने का रस, सुनने का रस, क्या बात कर रहे हैं, बैठे यहां हैं कान वहां है, सुनने का रस। कोई ऐसे न्यूज है कितना रुचि लेते हैं, अरे बताओ बताओ मुझे मालूम ही नहीं, बताओ क्या हुआ करके, सुनने का रस। खाने का रस, खाने का रस, खाओ 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 होता है। बातें करने का रस, राह देखते हैं, कोई मिले कोई आवे तो बात करे साइलेंस में परेशान हो जाते, बोलने का रस, आदत पड़ गई ना। ये इंद्रिय रस है, और उसमें मनोविकार भी मिक्स हो गए। तो तपस्या का एक लक्ष्य होता है आत्मशुद्धि। बाबा भी कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनना, पूर्ण शुद्ध आत्मा मुझे बनना। मनसा में भी कोई विकार न रहे, कर्म में ब्रह्मचर्य है, कर्म में शुद्धि है, हम बाबा के बच्चे हैं, नियम मर्यादाओं में चलते हैं, पक्के ब्राह्मण हैं, कर्म में शुद्धि है, पर हम चाहते हैं मनसा में भी शुद्धि। मनसा में भी कोई तूफान युद्ध न रहे। हम इसी के पुरुषार्थी हैं, ताकि हमारी मनसा निरंतर बाबा से ले सके और हम मनसा से निरंतर दे सके। लेना भी मन से है ना बाबा से, मन बुद्धि से ही लेना है, मन बुद्धि से ही देना है। इसलिए हमारी तपस्या का लक्ष्य है कि हम पूरा शुद्ध बन जाए। जो बाबा के सत्य ज्ञान के अनुसार जो मुझ आत्मा में नहीं होना चाहिए वो नहीं ही हो, ताकि कभी ग्लानी का अनुभव ना हो, है? जो मुझ ज्ञानी तो आत्मा को नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, वो प्रैक्टिकल हो, ये हम सब चाहते हैं। तो जब हम भट्ठी में बैठते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तपस्या के साथ मौन एकांत का संबंध है। क्योंकि सबसे फारिग होंगे तब तो खुद के लिए लगेंगे, मुख चलेगा तो मन नहीं चलेगा बाबा से। यहां से डिस्कनेक्ट होंगे तो बाबा से मन से ज्यादा कनेक्ट हो सकेंगे। तो मौन को, साइलेंस को नेगेटिवली ना ले, बात नहीं करना है, बात नहीं करना है, बात नहीं करना है करके भारी हो जाते हैं। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है करके भारी हो जाते हैं। नहीं, पॉजिटिवली बाबा से बात करते, खुद से बात करते। पढ़ाई रिवाइज करनी है, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर गौर करना है, अंडरलाइन करना है, स्कूल में पढ़ते थे तो लाइन करके आईएमपी लिखते थे ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएमपी, अंडरलाइन करते थे। तो हमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो अंडरलाइन करनी है, गौर करनी है, उस पर गहराई से अटेंटिव बनना है। तो भट्ठी माना मौका है खुद पर वर्क करने का। फुर्सत से अपने आप बैठने का। इसलिए आपस में तो मिलते ही हैं, बातें करते ही हैं, हम एक दो को जानते हैं, सभी स्थान देखे हुए हैं, देखे हैं ना सबने कि फर्स्ट टाइमर है कोई, पहली बार पांडव भवन में, मैंने देखा ही नहीं है और पहली बार आए हैं, ऐसे कोई है? बहुत कम लोग है ना, बाकी सब का देखा हुआ है ना। तो देखने की बात नहीं है अब, है ना, सबने देख लिया है बाबा के घर, सेवा के स्थान। अब है गहराई से रियलाइज करना है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि ये सत्संग नहीं है, पढ़ाई है। लक्ष्य है, हम रोज ज्ञान योग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लिखना, आपका क्या लक्ष्य है, ये खुद आप बैठ के लिखना। हम रोज ज्ञान योग क्यों करते हैं? हम रोज बाबा के घर क्यों आते हैं? हम प्रति वर्ष मधुबन क्यों आते हैं? हमने ये यूनिफॉर्म क्यों पहना है? हमने ये बैज क्यों लगाया है? लिखना। ताकि मूल उद्देश्य फिर रिवाइज हो जाए, पक्का हो जाए। मैंने इन सबके द्वारा लक्ष्य क्या है, और ये मुझे प्रैक्टिकल करना है। बल रोज ज्ञान योग हम करते हैं। देखो फिजिकली भी रोज हम नहाते हैं, शरीर शुद्ध करते हैं, फिर भी कहेंगे आज हफ्ते में एक बार दो बार आज अच्छी रीति स्नान किया। कहते हैं ना, आज रगड़ रगड़ के शरीर साफ किया। रोज नहाते हैं फिर भी हफ्ते में एक बार अच्छी रीति स्नान किया, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ मैल बन ही जाता है। रोज झाड़ू पोछा करते हैं घर में, फिर भी 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, मास में भी आज तो थोड़ा अच्छी रीति सफाई की, कोने कोने से जाले साफ किए। क्योंकि रोज झाड़ू पोछा करते हैं तो भी कोने में कहीं ना कहीं जाले बन जाते, तो भल हम रोज ज्ञान योग करते हैं, फिर भी कहीं न कहीं मन में जाले बन जाते हैं, ईर्ष्या के, वैर के, द्वेष के, नाराजगी के, अनबन के, मन मुटाव के, बैड फीलिंग के, है ना? कोई ना कोई धूल कचरा जम जाता है। तो ये जरूरी है कि हम दो चार मास के बाद, छह मास के बाद हम भट्ठी करते हैं और हम अच्छी तरह अपने आप को देखते हैं और साफ करते हैं। तो रूटीन सफाई होने के बावजूद भी स्पेशल सफाई जरूरी है। तो इसलिए हमारे इस पुरुषार्थ के जीवन में भी जरूरी है कि हम समय निकाल कर बैठें, खुद को देखें, बाबा की तुलना में कंपेयर करें और अपने आप को फिर साफ करें, व्यवस्थित करें, अपने आप को बाबा जैसा बनाएं। और हमारी तपस्या कौन सी है? योग बच्ची बताए ना कि संस्कार परिवर्तन, मौन, तपस्या बच्ची। संस्कार परिवर्तन, हर एक अपने आप को जानते हैं कि अभी भी कहां मुझे बदलना बाकी है। हमने काफी परिवर्तन किया है पर फिर भी अभी भी बातें हैं जो बदलनी है। अभी तक नहीं बदली है फिर पुरानापन आ जाता है, कलियुगपना, शुद्रपना, पतितपना, जो कुछ कहो फिर से वो आ जाता है। मीन्स पूरी सफाई नहीं हुई है ना। तो वो परिवर्तन करना है। मौन, साइलेंस, अंदर का आनंद, अपने स्वरूप का आनंद, बाबा मिलन का आनंद, पवित्र वाइब्रेशन का आनंद, वो अनुभव करना है। हमारी तपस्या हठ दमन की नहीं है। हमारी तपस्या समझ और स्नेह की है। हमारी पहली साधना है आत्मभिमानी बनने की। ये फाउंडेशन है। आत्मभिमानी स्थिति योग की आधारशिला है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति अभ्यास है। हम स्थिति बनाना चाहते हैं। हमारी तपस्या है निरंतर बाबा याद रहे, बाबा भूले नहीं, हम विस्मृत ना हो। इसलिए तो तप कर रहे हैं ना। तप मीन्स एक संकल्प से दृढ़ता पूर्वक किया हुआ लंबा पुरुषार्थ, उसे तप कहते हैं। ये चीज पाने के लिए मैंने बहुत तप किया है, मैंने एक लंबे समय की मेहनत की है। एक संकल्प से दृढ़ता पूर्वक किया हुआ लंबा पुरुषार्थ, तो हमारा दूसरा तप है कि बाबा भूले नहीं, निरंतर याद रहे, स्मृति स्वरूप बन जाए। जब अटेंशन देते हैं तो पता चलता है कि दिनचर्या में कितना समय हम बिल्कुल भूले हुए होते। अगर हम अपने आप पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि ये घंटा मैं बिल्कुल भूल गई थी। कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना? बातों में कॉन्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल हम भूल जाते हैं उस समय। इमर्ज रूप में याद नहीं होती। तीसरा हमारी तपस्या है कि हम सदा ऊपर वतन में रहें। भला हम शरीर से यहां हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं लौकिक अलौकिक, पर बुद्धि से वतन में रहे। मन की आंख से घर को देखें, इस दुनिया में रहते ऊपर रहना। तीसरा हमारा तप है स्वयं पर इतना संयम हो, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर हो कि कर्मेंद्रिय से कोई भूले ना हो। हम इतने डिटैच रहे, इतने ऊपर रहे, कोई भी बात के प्रभाव में आकर कर्म ना हो जाए। कर्मेंद्रिय से कोई भूल ना हो। और जो चीज कर्मेंद्रिय से नहीं करनी है, मुझे मन से भी नहीं करनी है, मनसा में भी नहीं करनी। भाई मुख से गुस्सा नहीं करते पर मन में कुड़ते, मन में गरम होते रहते हैं। कर्मेंद्रिय से नहीं करते हैं तो वो मन से भी मुझे नहीं करना, तो उसके लिए और सूक्ष्म अटेंशन और पुरुषार्थ। पांचवी बात, प्रैक्टिकली मुझे इस ईश्वरीय जीवन की आचार संहिता में चलना है। प्रैक्टिकल जो हमारी डिसिप्लिन है, नियम मर्यादाएं हैं। हम यज्ञ से जुड़े हैं, बहुत बड़ी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स रेगुलेशंस है, हमारी भी जो आचार संहिता है, नियम मर्यादाएं हैं, मुझे उसमें चलना है। बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप का नाम बदनाम। कोई ये न कहे कि ये ब्रह्मा कुमारी में ऐसा सिखाते। तो लक्ष्य यही है योग भट्टी का। आप सबने भी अपना लक्ष्य बनाया होगा। आप तीन दिन समय निकाल करके आए हैं, आपका अपना भी निजी लक्ष्य, इस बार मुझे अपने आप पर कहां विशेष फोकस करना है। और बाबा हम बच्चों को जो योग तपस्या करने के लिए कहते हैं वो किस लिए कहते हैं, क्यों जरूरी है, वो सारी बातें हम सबने की। और लास्ट हम जानते हैं कि यही संगम का समय है, है ना? फिर ड्रामा में कोई मौका नहीं है। अभी हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से जितना ऊंचा उठाना चाहें हम उठा सकते हैं, क्योंकि खुद बाबा हमें गाइड कर रहे हैं। फिर तो पूरे ड्रामा में, पूरे चक्र में कोई मौका नहीं है, है ना? फिर तो सतयुग की प्रथम क्षण से ही खर्च होना शुरू है, है ना? जमा करने का भी ही मौका है, कुछ बनने का भी ही मौका है। तो अगर बाबा कहता है अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो अपनी लौकिक भौतिक सांसारिक कामनाओं को सीमित करना है, है ना? तो हम टाइम दे सकेंगे और संगम युग के लक्ष्य को सिद्ध कर सकेंगे। तो इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए साइलेंस में बैठकर आप डायरी में लिखना, प्रैक्टिकल आपका लक्ष्य क्या रहेगा। ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे और लक्ष्य को अंडरलाइन कर लेंगे। 2 मिनट सभी खड़े हो जाएं, हाथ पांव स्ट्रेच कर लें। कमर ठीक कर ली, खड़े खड़े दौड़िए स्पॉट रनिंग, बहुत अच्छा। दो दो की जोड़ी बनिए, और सोच लीजिए, मन ही मन अंडरलाइन कर ले, मेरा लक्ष्य क्या है, इस भट्टी में आने का मेरा अपना लक्ष्य क्या है। और अब आप अपने पार्टनर को और फिर आपका पार्टनर आपको कान में बताएं, आप भट्टी में किस लक्ष्य से आए, कान में बताएंगे। कान में बताइए एक दो को आप किस लिए आए हैं, और वो आपको बताएं कि वो भट्टी में किस लिए आए हैं। बताया, अब पार्टनर चेंज कर लीजिए, दूसरे पार्टनर के आमने सामने हो जाइए, अब आप दूसरी बात पहले मन में सोचिए, जिस लक्ष्य को लेकर आप आए हैं प्रैक्टिकल उसे सिद्ध करने के लिए 3 दिन के भट्टी में विशेष कौन सी धारणा आप करेंगे, जो आपका लक्ष्य है इस योग तपस्या भट्टी का, उससे सिद्ध करने के लिए प्रैक्टिकल स्पेशली 3 दिन कौन सी डिसिप्लिन को आप अपनाएंगे, कान में बताएं पार्टनर को। जिन्होंने बता दिया वो बैठ जाए, दोनों बातें डायरी में नोट कर लीजिए, आपने पार्टनर को क्या बताया, नोट कर लीजिए। नोट पेन लाए हैं ना सभी? आपका लक्ष्य क्या है भट्टी में आने का, और उस लक्ष्य को पाने के लिए 3 दिन स्पेशल कौन सी डिसिप्लिन आप ऑब्जर्व करेंगे, कौन सी विशेष धारणा अपनाएंगे? अब बाबा की याद में बैठेंगे और मन ही मन आप बाबा को बताएंगे, बाबा से भी आप शेयर करेंगे कि बाबा मैं किस लिए आया हूँ और उसके लिए मैं क्या क्या करूँगा। वतन में चलेंगे, बाप दादा की सामने उपस्थित होंगे, प्यारे बाप दादा सदा हम बच्चों से चाहते हैं हम बाप समान बने, संपन्न और संपूर्ण बने। और बाबा से पूरा वर्षा ले, प्यारे बाबा मैं भी यही चाहती हूं। जीवन जीने के लिए मैंने योग मार्ग अपनाया है। भोग मार्ग छोड़ा है, योग मार्ग अपनाया है। मेरा इस अंतिम जन्म का यह जीवन पवित्र जीवन है, योगी जीवन है। इस पवित्र योगी जीवन का हर क्षण मुझे सफल करना है। हर संकल्प मुझे श्रेष्ठ बनाना है। प्यारे बाबा, दो मूल सत्य आपने हमें बता दिए हैं। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, जब मैं बार बार रियलाइज करती हूँ मैं अब कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, माना मेरा कौन है, तो प्रैक्टिकली मुझे क्लियर हो जाता है कि अब मुझे क्या करना है। वो सद्विवेक, वो दिव्य बुद्धि बाबा आपके सत्य ज्ञान से मुझे प्राप्त हो जाती है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कोई मुंज नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, जीवन के सभी कंसेप्ट, जीवन के हर पहलू स्पष्ट है। अब स्वयं का मालिक बन मैं जी सकती हूँ। मुझे बार बार इन मूल सत्यों को आपकी मूल शिक्षाओं को मूल श्रीमत को रिवाइज करना है। रियलाइज करना है दृढ़ करना है ताकि फिर से मैं विजयी बन जाऊं।
याद रहेगी तब आंखों में समाया हो।